पिछले पाठ में बात हो रही थी कि परोक्षे लिट में परोक्षे शब्द जो है वह अव्यावर्तक है, अर्थात परोक्षे शब्द को कहने की जरूरत नहीं है। तो उसका समाधान ये दिया था कि भाष्यकार ने जो कहा वो कहा कि सामूहिक रूप से क्रिया को नहीं देखा दिखाया जा सकता है, लेकिन अवयवशः जो है वह प्रत्यक्ष होता है और उस प्रत्यक्ष क्रिया का ग्रहण न हो यहाँ पर, इसलिए परोक्षे लिट में परोक्षे का प्रयोग किया गया। अब इसमें एक प्रमाण के तौर पर भी बताते हैं, कहा कि अन्यथा पश्चिम मृगो धावती इत्यत्र तस्या दर्शन कर्मता न स्यात् इति प्रतिभाति। कहा कि पीछे ये प्रसंग आया है पश्चिम मृगो धावती, माने मृग दौड़ता है देखो। अब यहाँ मृग दौड़ता है देखो में किसको देखा जाने देखने के लिए बताया जा रहा है, तो धावती को देखने के लिए बताया जा रहा है, माने मृग जो है बड़ी तेजी से दौड़ता है, वह जो तेजी से दौड़ना क्रिया है उस दौड़ने क्रिया को देखने की बात की जा रही है। तो यहाँ अगर मान लीजिए कि क्रिया हमेशा परोक्ष ही हो, प्रत्यक्ष न हो, तो यहाँ पश्चिम मृगो धावती यह जो प्रयोग होता है, यह जो वाक्य बनता है, यह वाक्य तो गलत होने लगेगा, क्योंकि धावती क्रिया जो है उसको कैसे व्यक्ति देखेगा, जब नहीं देखेगा तो फिर पश्चिम मृगो धावती ऐसा कैसे कहा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया जो है दोनों तरह की होती है, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी। समूह रूप में क्रिया परोक्ष होती है और अवयवशः जो है माने टुकड़ों में जो है क्रिया प्रत्यक्ष भी होती है, और उसी प्रत्यक्ष क्रिया को निषेध करने के लिए सूत्र में परोक्ष कहा गया। अब इसमें कुछ आचार्यों का ये कहना है कि जो परोक्षे लिट है या परोक्ष किसको परोक्ष होना चाहिए, क्रिया को परोक्ष होना चाहिए या क्रिया को करने वाला जो करता है उसको परोक्ष होना चाहिए, क्योंकि परोक्ष अर्थ रहने पर लिट लकार का प्रयोग होता है ना, तो क्रिया परोक्ष रहे तो लिट लकार का प्रयोग हो, अथवा क्रिया को करने वाला जो है वह अगर परोक्ष हो तो लिट लकार का प्रयोग हो। तो इसमें दोनों तरह का सिद्धांत शास्त्र में आता है। पहला सिद्धांत तो ये है कि क्रिया अगर परोक्ष है तो लिट लकार का प्रयोग होगा, और दूसरा पक्ष ये भी है कि क्रिया को करने वाला जो करता वह करता अगर परोक्ष है तो भी लिट लकार का प्रयोग होता है। तो वही दूसरा जो पक्ष है उसको आगे बता रहे हैं कि व्यापाराविष्टानां क्रियानुकूल साधनानां एव अत्र पारोक्षम विवक्षितम अतो नोक्त दोषः। व्यापार आविष्टान, व्यापार माने क्रिया, आविष्ट माने करने वाला, क्रिया करने वाला जो करता है वह करता अगर परोक्ष है तो उस स्थिति में लिट लकार का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा परोक्षे लिट का अर्थ माना जाएगा। अतो नोक्त दोषा, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। कौन सा दोष नहीं है, वो भाष्यकार वाला जो दोष बताया था ना कि भाष्यकार ने अतिन्द्रिय माना है क्रिया को, तो आप उसमें कैसे परोक्षे लिट में परोक्षे कहते हैं, वह दोष नहीं लगेगा, क्योंकि या जो क्रिया करने वाला करता है ये तो संभव है, दोनों स्थिति हो सकती है। जैसे किसी ने खाना पकाया तो पकाने वाला जो व्यक्ति है, रसोईया जो है, वह रसोईया प्रत्यक्ष भी हो सकता है और परोक्ष भी हो सकता है, तो इसलिए वहाँ परोक्षे लिट कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की भी व्याख्या आचार्य लोग करते हैं। अयम पपाच इत्यादि अनुरोधात व्यापाराविष्टानाम इत्यपि वदन्ति। अयम पपाच, पपाच जो है ना ये लिट लकार का प्रयोग है कि इसने खाना पकाया। अब यहाँ पर इसने, जिसने पकान खाना पकाया, मान लीजिए कि देवदत्त नाम का रसोईया जो है खाना पकाया, तो देवदत्त अगर दिखाई नहीं दिया, देवदत्त अगर परोक्ष है तो उस स्थिति में अयम पपाच यह प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कर्ता का पारोक्ष लिया जाता है, क्रिया का पारोक्ष नहीं लिया जाता है। अर्थात अथवा ये कह सकते हैं कि क्रिया से युक्त जो कर्ता है उस कर्ता का पारोक्ष लिया जाता है, केवल क्रिया का पारोक्ष नहीं लिया जाता है। तो चलिए, तो फिर दो बातें हो गई इसमें। एक तो हुआ कि क्रिया परोक्ष होगा, क्रिया परोक्ष होगी तो लिट लकार का प्रयोग होगा, और दूसरा पक्ष हुआ कि क्रिया करने वाला कर्ता अगर परोक्ष है, माने क्रिया से युक्त अगर कर्ता परोक्ष है तो वहाँ पर लिट लकार का प्रयोग होता। अब आगे एक फिर शंका समाधान है। उदयनाचार्य का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े न्यायिक थे, उन्होंने एक किरणावली ग्रंथ लिखा है, और उस किरणावली ग्रंथ में उदयनाचार्य ने मंगलाचरण में अपने लिए ही, स्वयं के लिए ही लिट लकार का प्रयोग कर दिया है। वो पंक्ति है व्यातेने किरणावलिम उदयनः। यहाँ जो व्यातेने है यह लिट लकार का प्रयोग है। इसका अर्थ है कि उदयनाचार्य ने किरणावली का व्यातनन किया, माने उसको विस्तारित किया, किरणावली नाम के ग्रंथ को लिखा, ये तात्पर्य है। अब स्वयं के लिए उदयनाचार्य ने यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग किया, अब बताइए ये संभव है क्या? स्वयं कैसे स्वयं से परोक्ष हो सकता है? स्वयं तो हमेशा स्वयं के लिए प्रत्यक्ष ही होगा, फिर भी यहाँ उदयनाचार्य ने अपने लिए लिट लकार का प्रयोग किया, ये शंका की जा रही है कि ये कैसे होगा। स्वक्रियाया स्वप्रत्यक्षत्वात् इति चेत्, माने स्वयं जो उदयनाचार्य ग्रंथ लेखन की क्रिया कर रहे हैं वो तो उनके द्वारा प्रत्यक्ष ही है, फिर कैसे इन्होंने व्याते ने माने परोक्ष अर्थ में यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग किया। तो इस पर भूषणकार कहते हैं कि असंगतम एवं, ताकि यह जो उन्होंने प्रयोग किया उदयनाचार्य ने ये असंगत है, अर्थात सही नहीं किया है प्रयोग इन्होंने, ये गलत प्रयोग है। क्यों गलत है, कैसे गलत है, उसको आगे लिखते हैं, ताकि व्यासंगादिना स्वव्यापारस्य परोक्षत्व उपपादने की। आपने देखा होगा कि आप कहीं पर बैठे हैं, कर कुछ रहे हैं और मन आपका कहीं अगर लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में आप किसी काम को कर जाते हैं लेकिन आपको खुद पता नहीं चलता कि मैंने इस काम को किया, क्योंकि आपका मन तो कहीं और होता है। तो इस तरह की परिस्थिति में क्रिया जो है स्वयं की जाने वाली जो क्रिया है वह भी स्वयं के का परोक्ष हो जाती है, मन कहीं और हो और कर कुछ और रहे हो, ऐसी स्थिति में अपनी वाली क्रिया भी जो है वह परोक्ष हो सकती है। वही कहा व्यासंग आदि ना, व्यासंग आदि के द्वारा, व्यासंग आदि के द्वारा मतलब मन कहीं और अगर एकाग्रचित हो गया हो, किसी दूसरे चीज में लग गया हो, तो उस स्थिति में स्व व्यापार जो है अपनी जो क्रिया है वह भी परोक्ष हो सकती है, ये तो ठीक है। लेकिन ग्रंथ लेखन की जो क्रिया है ये तो तब संभव नहीं है ना, अगर मन कहीं और हो तो भी आप एक ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ का लेखन कर लेंगे, ये संभव नहीं है। ग्रंथ का लेखन तभी संभव है जब आपका पूरा का पूरा मन जो है उसमें एकाग्र हो, चिंतन करने में, शास्त्र का विचार करने में, चिंतन करने में एकाग्र हो, और एकाग्र भाव से जब आप लिख रहे हो तभी आप ग्रंथ का लेखन कार्य कर सकते हैं। तो ग्रंथ लेखन कार्य में अपनी जो क्रिया है वो अपने से कभी भी परोक्ष नहीं हो सकती है, इसीलिए उदयनाचार्य ने जो लिखा व्याते ने किरणावली मुदयना में, व्याते ने लिट लकार का प्रयोग किया, वो सही नहीं किया, क्योंकि उनका स्वयं की जाने वाली जो ग्रंथ रचना क्रिया है वह परोक्ष नहीं हो सकती। अद्यतनत्व अतीतत्वयोः विस्तार क्रियायाम असत्वेन अनद्यतनातीतत्वयोः अभावेन तदर्थक लिट असंभवात्। इतना ही नहीं है, तीनों गड़बड़ है इसमें। एक तो अपना अपने स्वयं के द्वारा किया जाने वाली जो की जाने वाली जो क्रिया है वह हमेशा क्या होगी, प्रत्यक्ष ही होगी, परोक्ष नहीं होगी, इसलिए लिट लग नहीं आएगा। दूसरा इसमें क्या होना चाहिए, अनद्यतनत्व होना चाहिए, माने 24 घंटे पहले या 24 घंटे पहले की बात होनी चाहिए, जो कि जो वो भी बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये स्वयं ग्रंथ लिख रहे हैं तो ये तो उसी समय वर्तमान समय में ही लिख रहे हैं ना, भूत में तो नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अनद्यतनत्व का भी अभाव है और अतीतत्व का भी अभाव है, माने भूतत्व का भी अभाव है, वहाँ तो वर्तमानत्व है, भूतत्व नहीं है। इस तरह से न अनद्यतनत्व है, न अतीतत्व है अर्थात भूतत्व है, और न परोक्षत्व है, तो तीनों चीजें यहाँ पर नहीं है, इसीलिए इन तीनों के अभाव में उदयनाचार्य के द्वारा किया गया जो प्रयोग है व्याते ने लिट लकार का प्रयोग स्वयं के लिए वह गलत है। इस तरह से लिट लकार के बारे में इन्होंने बता करके अब आगे कहते हैं कि लुडर्थम आहा, लुट लकार का अर्थ बताया, कहाँ पर बताया, वही उसी कारिका में वर्तमाने परोक्षे स्वो भाविन्यर्थे भविष्यति, यह जो कारिका है उसमें जो स्वो भाविनी कहा है वह लुट लकार का अर्थ है। स्वो भाविनी का अर्थ क्या है तो आगे बताते हैं, अनद्यतने भाविनी इत्यर्थ। अब आप अद्यतन अनद्यतन समझ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार और कहता हूँ कि 24 घंटे का जो समय है वह है अद्यतन, 24 घंटे से भिन्न जो समय है वह है अनद्यतन। तो अनद्यतन भावी अर्थ, भावी माने भविष्य में होने वाला, तो 24 घंटे बाद में होने वाला जो काल है वह काल अर्थ होता है लुट लकार का। इसमें प्रमाण बताया अनद्यतने लुट इति सूत्रात्, अनद्यतने लुट जो पाणिनि का सूत्र है यही इसमें प्रमाण है, और उदाहरण दिया यथा शो भविता इत्यादो, सो भविता, अगर ऐसा है प्रयोग तो भविता यहाँ पर लुट लकार का यह प्रयोग है। इसका अर्थ होगा कि 24 घंटे बाद होने वाली कोई क्रिया है, उस क्रिया को कहेंगे सो भविता। अब लिडर्थम आह भविष्यति, और लिट लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल। अब भविष्यत काल कौन सा भविष्यत काल, क्योंकि काल के तो दो भेद बताए गए ना, अद्यतन काल और अनद्यतन काल। तो भविष्यत अद्यतन काल अर्थ है या भविष्यत अनद्यतन काल अर्थ है, कौन सा काल अर्थ है? तो आगे कहते हैं भविष्यत सामान्य इत्यर्थ, ठीक नहीं, लिट का अर्थ जो है ना वो सामान्य भविष्यत है। सामान्य भविष्यत मतलब दोनों चलेगा, अद्यतन भविष्यत भी चलेगा और अनद्यतन भविष्यत भी चलेगा, माने 24 घंटा बाद में होने वाली जो बात है उसमें भी लिट का प्रयोग होगा और 24 घंटे के अंदर होने वाली जो बात है उसमें भी लिट लकार का प्रयोग होगा। तो वही है भविष्यत सामान्य इत्यर्थ। इसमें पाणिनि का सूत्र प्रमाण है लिट से च, इसी सूत्र से लिट लकार का प्रयोग होता है। उदाहरण दिया यथा घटो भविष्यति, यहाँ पर माने घड़ा बनेगा, घड़ा होगा, तो वह घड़ा जो है ना 24 घंटे से पहले होने वाला हो तो भी घटो भविष्यति प्रयोग होगा, 24 घंटे के बाद होने वाला होगा तो भी घटो भविष्यति प्रयोग होगा। अब भविष्यत का लक्षण बताते, जैसे वर्तमान का लक्षण बताया ना, उसी तरह से यहाँ पर भविष्यत का लक्षण बताते हैं कि वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगी समय उत्पत्ति मत्वम। ऐसे पहले मैं समझाने की बात कर लेता हूँ कि भविष्यत काल क्या होता है, कि भविष्यत काल से ठीक पहले वर्तमान काल का अभाव रहता है, क्योंकि वर्तमान काल अभी मान लीजिए वर्तमान काल है और वर्तमान काल जब खत्म होगा तो भविष्यत काल की शुरुआत होगी, ये क्रम है ना। अभी वर्तमान है और वर्तमान जब खत्म होगा तो भविष्यत का प्रारंभ होगा। तो भविष्यत के प्रारंभ होने से पहले किसका अभाव रहता है, वर्तमान का अभाव रहता है, और वह कौन सा अभाव भी कई तरह का होता है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। तो यहाँ पर वर्तमान का कौन सा अभाव होगा, तो प्राग अभाव, प्राक अभाव, प्राक माने पहले जो रहने वाला अभाव है उसको कहते हैं प्राग भाव। तो वर्तमान का जहाँ प्राग भाव हो, उस वर्तमान प्राग भाव का जो प्रतियोगी समय है, तो वर्तमान प्राग भाव का प्रतियोगी समय होगा भविष्यतकालिक समय। उस भविष्यतकालिक समय में जिसकी उत्पत्ति हो उसी को हम भविष्यतकालिक क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार जान लीजिए, वर्तमान काल का जहाँ पर प्राग भाव हो, उस वर्तमान प्राग भाव का जो प्रतियोगी समय है, उस समय में जिस क्रिया की उत्पत्ति हो उस क्रिया को भविष्यतकालिक क्रिया कहा जाता है। यही कहा इन्होंने, वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगी समय उत्पत्ति मत्वम। फिर आगे लेट लकार की बात हो रही है, ये लेट लकार जो है ये वेद में इसका प्रयोग होता है, लोक में प्रयोग नहीं होता है। आपने भादी में पढ़ा होगा एसु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर, माने लेट लकार जो है पांचवा लकार, इसका केवल वेद में प्रयोग होता है, छंदो मात्र गोचर होता है, छंद माने वेद, वेद मात्र में यह गोचर होता है, माने दिखाई देता है, लोक में प्रयोग नहीं होता। तो उस वह जो लेट लकार का उसका अर्थ क्या है, तो उसका जैसे लिंग लकार का अर्थ होता है ना, वही अर्थ लेट लकार का भी होता है। इसलिए कहा विद्यादो इति, कि विधि आदि जो है लेट लकार का अर्थ होता है, और इसमें पाणिनि का सूत्र प्रमाण है लिंगार्थे लेट, क्लियर है, क्लियर रूप से कहता है कि लिंग अर्थे लेट, लिंग के अर्थ में लेट लकार होता है, और लिंग का अर्थ क्या है, तो लिंगार्थश्च विद्यादि इति वक्ष्यते, ताकि लिंग का अर्थ जो है विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, ये सब अर्थ होते हैं, इसको बाद में बताया जाएगा। तो जो लिंग का अर्थ होता है वही लेट का भी अर्थ होता है। फिर आगे कहा लोडर्थ माह प्रार्थनेति, लोट लकार का क्या अर्थ है, काकी प्रार्थना अर्थ होता है लोट लकार का। अब प्रार्थना केवल प्रार्थना नहीं, वहाँ पर प्रार्थनादि अर्थ होता है, तो आदि से किसको लेना है, तो विद्यादि आशीषो गृह्यन्ते, माने विधि, निमंत्रण, आमंत्रण भी अर्थ है लोट का, आशीष आशीर्वाद अर्थ भी है और प्रार्थना अर्थ भी है। इसमें प्रमाण कहते हैं आशीषी लिंग लोटो लोट च इति सूत्राभ्याम तथा अवगमात, ताकि आशीषी लिंग लोटो जो पाणिनि का सूत्र है ये कहता है कि आशीर्वाद अर्थ होता है, और लोट च सूत्र जो है ये कहता है कि विधि, निमंत्रण, आमंत्रण इत्यादि अर्थ होता है। तो इन्हीं दोनों सूत्रों के प्रमाण से लोट लकार का क्या क्या अर्थ मानना चाहिए, तो विधि आदि अर्थ मानना चाहिए, आशीष अर्थ मानना चाहिए और प्रार्थना अर्थ भी मानना चाहिए। अब इसका उदाहरण दिया, यथा भवतु ते प्रसाद इत्यादो, ते शिव प्रसाद भवतु, आपका जो है आपको शिव जी का प्रसाद मिले, माने शिव जी की कृपा आप पर हो। तो यहाँ जो भवतु या जो लोट लकार का प्रयोग है, यहाँ पर आशीर्वाद इसका अर्थ है लोट लकार का। एतयो अर्थो लिंगार्था एवा, एतयो माने एतयो द्वयो, ये जो दोनों लकार है कौन, लेट लकार और लोट लकार, इन दोनों लकारों का लिंग अर्थ एवा माने लिंग लकार की तरह ही अर्थ होता है। त्रयाणाम समान अर्थत्वात्, ये तीनों लकार जो है समान अर्थक होते हैं, समान अर्थ वाले होते हैं। कौन तीनों, लेट लोट और लिंग, इन तीनों लकारों का समान ही अर्थ होता है। तो इस तरह से ये जो छह टित लकार थे, लट लिट लुट लिट लेट और लोट, इन छह लकारों का अर्थ जो है यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। जो पहले कारिका हमने पढ़ी थी, उस कारिका में छह लकारों की चर्चा थी, उन छह का के अर्थ के बारे में यहाँ तक बताया गया। अब अगले पाठ में हम ङित लकार के बारे में पढ़ेंगे। ङित लकार कौन है, तो लंग लिंग लुंग लिंग, ये जो चार लकार हैं ङित लकार, इनके अर्थ को भी एक कारिका के द्वारा पहले संक्षेप में बताया जाएगा और फिर व्याख्या की जाएगी कोंडभट्ट के द्वारा, भूषणकार के द्वारा, उसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।